मत्ती अध्याय 9। फिर यीशु एक नाव पर बैठकर झील के उस पार अपने गांव जा पहुंचे। तभी लोग चारपाई पर लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति को उनके पास लाए। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर अपंग व्यक्ति से कहा,
बेटा हिम्मत रखो, तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिल चुकी है।
उनमें से कुछ विद्वानों ने आपस में कहा,
ये इंसान तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है।
उनके विचारों को जानकर यीशु ने कहा,
तुम अपने मन में बुरा क्यों सोच रहे हो? क्या कहना आसान है, ये कि तुम्हारे सारे पाप माफ हुए, या उठो और चलने लगो? लेकिन इसलिए कि तुम ये जान लो, परमेश्वर के बेटे को इस दुनिया में पापों को माफ करने का अधिकार है।
इसके बाद ही यीशु ने उस अपंग इंसान से कहा,
उठो, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चले जाओ।
वह तुरंत उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने यह देखा तो आश्चर्य से भरकर उस परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, जिन्होंने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया था। वहां से निकलने के बाद यीशु ने मत्ती नामक एक व्यक्ति को टैक्स ऑफिस में बैठे देखा। उससे यीशु ने कहा,
मेरे साथ आओ।
वह तभी उठा और यीशु के साथ हो लिया। अब जब यीशु घर में खाना खाने बैठे हुए थे, बहुत से टैक्स लेने वाले और दुष्ट लोग यीशु और उनके शिष्यों के साथ आकर बैठे। जब फरीसियों ने देखा तो शिष्यों से कहा,
तुम्हारे गुरु टैक्स लेने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खाते हैं?
जब यीशु ने यह सुना तो उनसे कहा,
जो स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें जो बीमार होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। जाओ और इसका मतलब सीखने की कोशिश करो। मैं तरस चाहता हूँ, कुर्बानी नहीं, क्योंकि मैं धार्मिक लोगों को नेवता देने नहीं आया हूँ, लेकिन इसलिए कि पापियों का बदलाव हो।
तब यहुन्ना के शिष्य यीशु के पास आकर कहने लगे,
ऐसा क्यों है कि हम और फरीसी अक्सर उपवास करते हैं, लेकिन आपके शिष्य ऐसा नहीं करते?
तब यीशु ने उत्तर में कहा,
क्या दूल्हे के रहते दूल्हे के दोस्त विलाप कर सकते हैं? लेकिन वे दिन आने वाले हैं जब दूल्हा उनसे दूर किया जाएगा और वे उपवास करेंगे। कोई भी व्यक्ति पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि ऐसा करने से पैबंद पुराने कपड़े को खींच लेगा और वो और ज्यादा फट जाएगा। लोग तुरंत निकाला हुआ अंगूर का रस पुराने चमड़े की थैलियों में नहीं भरते हैं, ऐसा करने से वे थैलियां फट जाती हैं और अंगूर का रस बह जाता है और थैलियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन नया अंगूर का रस नई थैलियों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं।
जबकि यीशु ये बातें कह ही रहे थे कि देखो, एक प्रधान ने आकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा,
मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन चलकर अपना हाथ उस पर रखें तो वह जिंदा हो जाएगी।
यीशु उठकर अपने शिष्यों को संग लेकर उसके साथ चल पड़े। इसी बीच एक महिला ने, जिसे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, पीछे से आकर उनके पहरावे के छोर को छू लिया। वे अपने आप से कहा करती थी,
अगर मैं उनके कपड़ों को ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी।
लेकिन यीशु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उससे कहा,
बेटी हिम्मत रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है।
उसी क्षण से वह महिला अच्छी हो गई। जब यीशु उस प्रधान के घर में पहुंचे तो वहां बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखकर कहा,
किनारे हटो, लड़की मरी नहीं है लेकिन सो रही है।
यह सुनते ही वे लोग यीशु पर हंसने लगे। लेकिन जब भीड़ निकाल दी गई तो उन्होंने अंदर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। इस बात की खबर उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे उनके पीछे ये पुकारते हुए चले,
हे दाऊद के वंशज, हम पर दया करें।
जब वे घर में पहुंचे तो वे अंधे उनके पास आए और यीशु उनसे बोले,
क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ?
उन्होंने यीशु से कहा,
जी हाँ प्रभु,
तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा,
तुम्हारे विश्वास के अनुपात में तुम्हारे लिए हो।
उसी समय उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें सख्त हुक्म देकर कहा,
सावधान, किसी को भी ये बात मालूम ना हो।
लेकिन उन्होंने निकलकर सारे देश में यीशु के नाम को फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उनके पास ले आए। जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने हैरान होकर कहा,
इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया।
लेकिन फरीसियों ने कहा,
यीशु तो दुष्ट आत्माओं के मुखिया की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं।
यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनकी सभाओं में उपदेश देते और परमेश्वर के शासन के बारे में बताते रहे। वहां पर वह हर तरह की बीमारियों और कमजोरियों को दूर करते रहे। जब उन्होंने भीड़ को देखा तो उनके दिल में करुणा उमड़ आई, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह थे जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं था। वे व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो फसल काटने मजदूरों को भेजें।